दी प्रिंट पॉट के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आपके लिए लाई हूं दी प्रिंट के नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी की रिपोर्ट का ये पॉट वर्जन। रांची के इंजीनियर ने आईएएस के लिए बनाए ड्रोन, टेरर टेक में क्रांति लाने वाला अब तुर्की की जेल में काट रहा है सजा। गुजरात की सामूहिक हत्याओं से आहत और बदले की भावना पाले एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र के लिए अस्तित्व की लड़ाई अपनी दाढ़ी बढ़ाने पर जाकर केंद्रित हो गई थी। सैयद मोहम्मद आर्शियान हैदर करीब एक साल से अधिक समय तक अपने चेहरे के बालों को बढ़ाता रहा। उसे यह विश्वास हो गया था कि अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध न होने के कारण ही मुसलमान अपना उत्पीड़न करने वालों का सामना करने में असमर्थ हैं। हैदर के माता पिता अपने बेटे के नव रूढ़िवादी धार्मिकता की ओर झुकाव से काफी चिंतित थे और वह उससे नाई के पास जाकर अपनी दाढ़ी कटवाने को कहते रहते। हालांकि यह युवक 2003 की एक शाम मिले एक मौलवी के तर्क से अधिक आश्वस्त था, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए। सवालों के घेरे में आए मौलवी अब्दुल रहमान अली खान, जिसके खिलाफ अब जिहादियों की भर्ती की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चल रहा है, ने पुलिस के सामने अपने इकबालिया बयान में हैदर के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी है, जिसे भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। युवा हैदर के लिए तो रहमान के साथ संपर्क एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक यह युवा, जिसका घर मूलतः रांची में है, सऊदी अरब के दमम में नौकरी करने पहुंचा था, वो भी एक केवल इस्लामिक स्टेट की टीम के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करने। उसने आत्मघाती ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलें तैयार की, जो आतंकवादी समूहों के शास्त्रागार के लिए एक क्रांति साबित हुई। अब 38 वर्ष का हो चुका हैदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2017 से तुर्की की जेल में कैद है, लेकिन उसकी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। क्लासिफाइड पुलिस और खुफिया रिकॉर्ड के साथ साथ दोस्तों, परिजनों और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत के जरिए दी प्रिंट ने उस भारतीय की कहानी को टुकड़ों में जोड़ने की कोशिश की, जिसने टेरर टेक्नोलॉजी बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि कैसे कई भारतीय इस्लामिक स्टेट से जुड़े और इसमें इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी बनाने की साजिश कैसे बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन कम से कम आर्शियन हैदर के मामले में इसकी जड़ें कुछ ज्यादा ही गहरी हैं। आर्शिया हैदर पर गहरा असर डालने वाले मौलवी अब्दुल रहमान अली खान की शुरुआत भी काफी अप्रत्याशित रही है। उड़ीसा के सैन्य पुलिस में एक अधिकारी के बेटे अब्दुल रहमान, जिसके सहयोगी उसे एक उत्कृष्ट मैराथन धावक के रूप में याद करते हैं, ने कटक के पास सतबटिया गांव के एक सरकारी स्कूल से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। फिर उसे स्कूल से निकाल लिया गया और एक मौलवी के तौर पर प्रशिक्षण के लिए एक मदरसे में भेज दिया गया। खान एक जिज्ञासु छात्र हुआ करता था। 1994 में देवबंद उत्तर प्रदेश के जाने माने दारुल उलूम मदरसा में पहुंच गया। पुलिस रिकॉर्ड और मदरसा में पढ़ाने वाले एक समकालीन उलमा के मुताबिक यहीं पर उसे कट्टरपंथ के बीच पड़े। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से ही देवबंद परिसर जिहाद की वकालत करने वाले कट्टरपंथी छात्रों और उसकी रूढ़िवादी शिक्षण व्यवस्था के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के लिए खयात हो गया था। परिसर में अपने साथी छात्रों की तरह, जिसमें अलकायदा के दक्षिण एशिया प्रमुख बनासन उल हक भी शामिल था, खान की जिहादियों के प्रति आकर्षित था। उसे चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक समूह का साथ मिल गया था। अप्रैल 2001 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेतृत्व वाले एक अभियान के तहत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों लियाकत अली, अब्दुल अजीज ब्रोही और फैजान अहमद को मार गिराया गया। जिन पर कथित तौर पर ध्वस्त विवादित स्थल पर बने एक हिंदू मंदिर के ढांचे पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। बताया जाता है कि इसके बाद अली को छिपने में मदद करने वाला खान देवबंद भाग गया। अगले 2 सालों तक खान ने खुद को छिपाए रखने की कोशिश की और पूर्वी भारत में मस्जिदों में काम करने में अपना समय बिताया। उसके भाई ताहिर अली खान को आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आखिरकार दोनों मामलों में वो बरी कर दिया गया। 2003 में किसी समय मौलवी खान को आर्शियन हैदर से मिलने का मौका मिला और इसके बाद ही यह सब शुरू हुआ। हैदर के परिवार से परिचित एक सूत्र ने बताया कि इस समय तक यह युवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई में व्यस्त था। हालांकि वह तबलीगी जमात में भी सक्रिय था, जो एक रूढ़िवादी सुन्नी धर्मांतरण आंदोलन है। खान की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 2005 में हैदर ने बेंगलोर की यात्रा की और कई महीनों तक एक मदरसे में पढ़ता रहा। हालांकि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह इंजीनियर उस समय जिहाद में शामिल हुआ था। फिर 2008 में हैदर को सऊदी अरब के दमम में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर नौकरी मिली और वह वहां चला गया। सऊदी अरब में ही वह अपनी पत्नी जातीय चेचन बेल्जियम की नागरिक अलीना हैदर से मिला और फिर इस दंपति की एक बेटी हुई। इस बीच मौलवी खान अपना नेटवर्क बढ़ाने में लगा रहा। इसके इकबालिया बयान के मुताबिक खान ने 2009-10 में बेंगलोर में डॉक्टर सबील अहमद से कई बार मुलाकात की और इस पर चर्चा की कि उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय मुसलमानों की लड़ाई को वित्तीय मदद कैसे मुहैया कराई जा सकती है। जब दोनों की मुलाकात हुई तब सबील को 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में अपने भाई और वैमानिकी इंजीनियर कफील अहमद के शामिल होने को लेकर आतंकी साजिश के बारे में जानकारी छिपाने के आरोप में कुछ समय ब्रिटेन की जेल में बिताने के बाद भारतीय डिपोर्ट किया जा चुका था। 2010 में जब सबील अहमद ने सऊदी अरब में काम करने के लिए फिर से भारत छोड़ा तो मौलवी ने उसे आर्शियन हैदर के संपर्क में रखा। भारतीय खुफिया अधिकारियों के मुताबिक 2012 से 2015 तक दमम में हैदर का घर जिहाद समर्थकों भारतीयों का अड्डा बन गया था। सऊदी अरब में अगले 3 वर्षों में होने वाली बैठकों के क्रम में खान का आरोप है कि उसने कथित तौर पर हैदर के लश्करे तैबा के लिए भारतीयों की भर्ती करने को कहा था। जांचकर्ताओं का दावा है कि 2015 के लश्कर के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक के लिए खान के संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते पाकिस्तान जाने का खर्च भी हैदर ने ही उठाया था। खान को अलकायदा के लिए भारतीयों की भर्ती करने को कहा गया था, जिसका नेतृत्व अब उसका देवबंद का पुराना साथी सनाउल हक संभाल रहा था। बहरहाल उसी साल के अंत में खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और सबील अहमद को सऊदी अरब में हिरासत में ले लिया गया था और उसे 4 साल बाद ही भारत निर्वासित किया गया। 2014 के अंत में फेडेक्स की डिलीवरी वैन तुर्की के शहर तान ल्यूरफा में नॉन डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर से नियमित तौर पर सामान ले जाने लगी। यह शहर प्राचीन गोबे कली टेप मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और एक मस्जिद उस जगह को चिन्हित करती है जहां पैगंबर अब्राहम का जन्म हुआ था। इन बॉक्सों के अंदर रिमोट कंट्रोल प्रोग्राम पैड्स स्मुलेटर सॉफ्टवेयर एंटीना कैमरा पॉट्स माइक्रो टर्बाइन इंजन जैसे रेडियो कंट्रोल खिलौने बनाने वाले पुर्जे थे, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट के शास्त्रागार के लिए घातक नए हथियार भी थे। यह भान होते ही कि सऊदी अरब में उसके नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया है, हैदर 2015 के अंत में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ तुर्की भाग निकला और वहां अपना घर बसाया। उधर सीमा से 1 घंटे की दूरी पर स्थित रक्का सीरिया में इस्लामिक स्टेट खिलाफत का मुख्यालय में बांग्लादेश में जन्मे और ग्लैमरगन शिक्षित कंप्यूटर इंजीनियर सिफुल हक सुजान ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पहुंचाने में सक्षम ड्रोन को असेंबल करना शुरू कर दिया था। सुजान के भाई अताउल हक सोबुल और बिजनेस पार्टनर अब्दुल समद ने उन फ्रंट कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल किया जो वेल्स में प्रोंटिप्रिट से लेकर स्पेन और अमेरिका तक फैला था। सुजान के ड्रोन के शुरुआती वर्जन केवल हैंड ग्रेनेड ही पहुंचा सकते थे, लेकिन 2015 में हैदर के जुड़ने के बाद उसके कामों की वजह से न केवल ये घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम हो गए बल्कि इसकी सटीकता भी बढ़ गई। तुर्की के जांचकर्ताओं के अनुसार हैदर कम दूरी की मिसाइलों पर भी काम कर रहा था जो बख्तरबंद और जहाजों पर हमला कर सकती हूँ। घातक हथियार पहुंचाने के लिए मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की कोशिश काफी लंबे समय से की जाती रही है। 1849 की गर्मियों में ऑस्ट्रिया के तोपखाने अधिकारी फ्रांज वॉन उचेटियस ने टाइमर लगे विस्फोटक गर्म हवा के गुब्बारों में भरकर वियना को घेरने वाली सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हालांकि हवाओं के रुख ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया था। इस्लामिक स्टेट के डिजाइनरों ने कम लागत पर सटीक तरह से इनका इस्तेमाल करना सीखा। 2016 में अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी मार्क जैक्स बसन ने बताया, जितना संभव हो सकता है उस हिसाब से मैंने सबसे सस्ता हमलावर ड्रोन बनाने का प्रयोग किया है। इसके लिए $4 का फोम बोट, पैकिंग टेप, हॉट ग्लू और करीब $250 वाले सस्ते चीनी कलपुर्जों की जरूरत है। यह बदसूरत लग सकता है लेकिन 6 से 12 मील की दूरी तक 2 पाउंड करीब 1 किलोग्राम वजन पहुंचा सकता है। दिसंबर 2015 में अमेरिकी के प्रेडेटर मिलिट्री ड्रोन से दागी गई एक हेलफायर मिसाइल ने रक में सुजान पर निशाना साधकर उसे मार गिराया। उसके भाई और हमले में शामिल कई अन्य लोगों को अमेरिका और ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2016 में तुर्की के अधिकारियों ने हैदर का ठिकाना ढूंढ लिया और अंततः उसे इस्लामिक स्टेट को ड्रोन, जैमर और एनक्रिप्टेड संचार उपकरण की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ गिरफ्तार अन्य लोगों में पाकिस्तानी नागरिक, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर निहाल जावेद और अकाउंटेंट शाहिद अख्तर शामिल थे। सिल का एक अन्य सदस्य खालिद ताशकंदी उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा व्यवसाय चलाता था। हैदर और उसकी टीम द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोन ने 2017 में मोसुल पर फिर से कब्जा की जंग के दौरान एक महीने से कम अवधि के समय में 100 उड़ानें भरी और सीरियाई रक्षा बल की गोला बारूद की आपूर्ति और रसद लाइनों को निशाना बनाया। एक दिन 15-16 हमले असामान्य नहीं थे। स्कॉलर डॉन रासलर के एक आधिकारिक अध्ययन से पता चला है कि आतंकवादी समूह दुनिया भर में वाणिज्यिक स्रोतों से ऐसे कंपोनेंट आसानी से खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूह नियंत्रण रेखा के पार हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर बेस को 2 ड्रोन डिलीवरी बमों के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई थी जो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से निर्देशित थी। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, भारत में आतंकवादी हमले में इस तकनीक का इस्तेमाल तो पुरानी बात हो गई है। पॉड के इस अंक में अभी इतना ही। फिर मिलते हैं नए अंक नए वर्जन के साथ। तब तक जुड़े रहें द प्रिंट पॉड से। नमस्कार।